आज है 11 जून दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। रक्षा मंत्री ने म्यांमार में हुई सैन्य कार्रवाई को बदली हुई सोच बताया और कहा कि जो डर रहे हैं वो दे रहे हैं प्रतिक्रिया।
क्रिएटिंग अ डिफरेंट माइंड सो मच सो दैट दोज हु फियर इंडियाज न्यू पोस्चर।
नेपाल में बारिश के बाद आई बाढ़ में 21 लोगों की मौत। असम में बाढ़ की वजह से 2,00,000 लोग प्रभावित। मैगी पर लगे प्रतिबंध पर नेस्ले कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप लंबे समय बाद पहुंचे टॉप 10 में।
खुश हूँ कि वापस टॉप 10 में आया, मगर अभी अच्छा करना है, मुझे टूर्नामेंट जीतना है। वैसे तो बस ये एनकरेजमेंट से मानूंगा और आगे जाके टूर्नामेंट जीतना है मुझे।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार शालू यादव से। भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने म्यांमार में हाल ही में हुई सैन्य कार्रवाई पर कहा है कि ये अभियान भारत की बदली सोच का दर्पण है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के इस नए रुख से जो लोग डर गए हैं वे अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उधर पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार ने कहा है कि भारत को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। म्यांमार के कोकांग क्षेत्र में सरकार विरोधी विद्रोहियों ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है। ये विद्रोही गुट मूल रूप से चीन से जुड़ा है, जिसने राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की है। म्यांमार और चीन की सीमा पर स्थित कोकांग क्षेत्र में कई महीनों से सेना और विद्रोहियों के बीच झड़प जारी है। कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में आकर विद्रोहियों ने युद्ध विराम का फैसला किया है। चीन ने पूर्व वरिष्ठ नेता जू योंगकैंग को भ्रष्टाचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर घूस लेने के अलावा अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल और राष्ट्रीय रहस्यों को लीक करने का आरोप था। 3 साल पहले सेवानिवृत्ति के बाद जू योंगकैंग राष्ट्रीय रक्षा मामलों के प्रभारी थे। चीन के सरकारी टेलीविजन पर अदालती कार्रवाई का टेलीकास्ट हुआ, जिसमें जू ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा, अदालत ने जो फैसला सुनाया है मैं उससे सहमत हूं और इसके खिलाफ अपील नहीं करना चाहता। मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने जो जुर्म किए हैं उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अपने सभी जुर्म कबूल करता हूं। ये थे चीन के पूर्व वरिष्ठ नेता जू योंगकैंग के शब्द और आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गिनिया और सीरिया लियोन में तीसरे हफ्ते लगातार इबोला के नए मामले बढ़े हैं। संगठन ने कहा कि इन दो देशों में पिछले हफ्ते ही 31 नए इबोला के मामले सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि इबोला से मारे गए लोगों को ठीक से न दफनाए जाने की वजह से संक्रमण अब भी फैल रहा है। ब्रितानी अभिनेता सर क्रिस्टोफर ली का 93 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया है। क्रिस्टोफर ली को हैमर हॉरर फिल्म से लोकप्रियता मिली थी, जिसके बाद वे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और स्टार वॉर्स प्रीक्वेल्स में अपने काम के बाद नई पीढ़ी के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय रहे थे। फीफा के सूचना निदेशक वॉल्टर डी ग्रिगेरियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वॉल्टर 2011 में फीफा से जुड़े थे और निदेशक सेप ब्लैटर के साथ वरिष्ठ सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। सेप ब्लैटर ने पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया था। फीफा का कहना है कि वॉल्टर साल के अंत तक एक सलाहकार के तौर पर उनसे जुड़े रहेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, म्यांमार में की गई सैन्य कार्रवाई पर आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि यह अभियान बदली हुई सोच है और जो भारत के इस नए रुख से डर रहे हैं वो अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही सरकार का कहना है कि अगर कोई भारत के विरोध में किसी तरह की चरमपंथी कार्रवाई करता है तो वो उसका जवाब देने का हकदार है। उधर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो हर तरह की साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय फौज द्वारा चलाए गए म्यांमार अभियान एक बदली हुई सोच का परिचायक है। उनका कहना था कि भारत की बदली हुई सोच से लोग डर रहे हैं।
बट आई एम गोइंग इन टू द एस्पेक्ट ऑफ इट क्रिएटिंग अ डिफरेंट माइंड सो मच सो दैट दोज हु फियर इंडियाज न्यू पोस्चर हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग एंड देयरफॉर
रक्षा मंत्री कह रहे थे कि जब सोच बदलती है तो कई चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। उग्रवादियों के खिलाफ एक साधारण अभियान ने देश में सुरक्षा के बारे में सोच को ही बदल कर रख दिया है। जो इस बदली हुई सोच से डर रहे हैं वही इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा था कि भारतीय फौज ने म्यांमार में जिस तरह की कार्रवाई की है वो उन सभी देशों के लिए एक संदेश है जहां से भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन होता है या उसे प्रश्रय दिया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में किए गए एक सवाल के जवाब में उसका भी नाम लिया था। हालांकि म्यांमार ने अपनी जमीन पर किसी भी भारतीय अभियान से इनकार किया है। इस अभियान पर पाकिस्तान और भारत के बीच एक तरह से वाक्य युद्ध छिड़ गया है और पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार ने कहा,
पाकिस्तान बर्मा नहीं है और वो दिन के वक्त ख्वाब देखना छोड़ दें। पाकिस्तान की अफवाज हर साजिश और हर इंट्रूजन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि मुकम्मल तौर पर अहल भी है।
पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है।
प्रेजेंट बांग्लादेश और उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान 71 में, उसमें इन्होंने हमारी अंदरूनी सूरत-ए-हाल, हमने अंदरूनी तौर पे हमें डिस्टेबिलाइज किया। एक बड़ी ताकतवर मिलिट्री है हमारी, हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है।
वहीं भारत के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना था कि भारत को ये हक है कि वो अपने खिलाफ चलाई जा रही किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को रोकने के लिए अभियान चलाए।
हमारा देश में घुस करके किसी और जगह से ट्रेनिंग लेकर के हमारा यहाँ जब नुकसान पहुँचाता है तो उसका जवाब देना वो भारत का कर्तव्य होता है।
हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी रक्षा मंत्री के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है।
डू नॉट टेक मनोहर पर्रिकर सीरियसली, ही इज अ मिनिस्टर हु हैज नॉट मेजर्ड अप टू हिज जॉब। व्हेन यू लुक एट हिज ट्रैक रिकॉर्ड, ही हैज अ हैबिट ऑफ पुटिंग हिज फुट इन हिज माउथ।
कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि रक्षा मंत्री को कई बार अपने बयानों के लिए मुंह की खानी पड़ी है। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करें ताकि उनको पता चले कि जिम्मेदार पद पर रहकर किस तरह के बयान किन मुद्दों पर दिए जाने चाहिए। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर पृथकतावादी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं, मगर म्यांमार के अभियान के बाद छिड़े वाक्य युद्ध के बीच कूटनीति और सुरक्षा के जानकारों को लगता है कि भारत ने ऐसा सफल ऑपरेशन तो किया लेकिन उसे इस मामले को चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं थी। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
ऐसा लग रहा है मानो विवाद आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक और फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र सिंह तोमर पुलिस हिरासत में है, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला दिल्ली के गृह सचिव धर्मपाल के तबादले को लेकर है। क्या है मामला, जानने के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की जुबैर अहमद से।
देखिए, धर्मपाल सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रखा था और दो दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया, ये कह के कि ये जिम्मेवारी उनकी है। और जब केंद्रीय सरकार ने जब ये उनका फैसला रद्द कर दिया तो उन्होंने अब होम मिनिस्ट्री को लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है केजरीवाल जी ने कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं सेक्रेटरीज वगैरह के, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, उन पर छोड़ दिया जाए और जब वो नया होम सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे तब वो उनसे कंसल्ट करेंगे। जब तक वो नहीं करते हैं अपॉइंट तो उन्होंने एक टेम्प्रेरी होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया है और कहा है कि इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन केंद्रीय सरकार ने और गृह मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कि एक बार LG दागते हैं, वो दूसरी बार वो उसको नकार देते हैं, फिर वो केजरीवाल अपना फैसला सुना देते हैं उसको काट के, और फिर केजरीवाल के फैसले को LG रद्द कर देते हैं। तो ये जो रस्साकशी पावर का जो चल रहा है वो इस धर्मपाल के अपॉइंटमेंट और उनके बर्खास्त किए जाने में भी इसकी अक्कासी होती है।
जी, और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही है। अब एक और फर्जी डिग्री का मामला सामने आ रहा है।
ये हमने इसके बारे में सुना है कि एक इनका जो विधायक है उसके पास भी जो फर्जी डिग्री का मामला उसके खिलाफ आया सामने और अदालत में ये मामला जाएगा, लेकिन इसकी पुष्टि आम आदमी पार्टी ने इस वक्त नहीं की। ये जाहिर है कि उनकी परेशानियां इस वक्त बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इसके पहले जब तोमर साहब के बारे में जो इल्ज़ाम था उस वो भी सिलसिला भी चल रहा है, उनको फैज़ाबाद ले जाया गया है जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि उनकी उनको डिग्री मिली है उस संस्था से, तो वहाँ पर पुलिस उनको लेकर गई है। उसके पहले बिहार लेकर गए थे जहाँ पर कुछ पत्रकार भी साथ में थे, और ये भी अखबारों में आया है कि वो अपनी संस्था को पहचान भी नहीं पाए, अपने क्लासरूम को पहचान नहीं पाए। तो ये अभी सब्जेक्टिस मामला है, इस पर हम ज़्यादा हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन परेशानियां आम आदमी पार्टी की बढ़ती ही जा रही हैं।
तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ये थे जुबैर अहमद। खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था या FSSAI के मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद नेस्ले इंडिया ने बम्बई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। FSSAI ने 5 जून को अपने आदेश में नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों के खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक बताया था। तो अपनी याचिका में नेस्ले इंडिया ने क्या कहा है, मैंने पूछा मुंबई में मौजूद स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर से।
नेस्ले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें ये कहा गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में उनके FDAs और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने जो भी नमूनों की जांच की है, उसके जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने दिए है, उन रिपोर्ट्स की न्यायिक जांच की मांग नेस्ले ने आज के अपने याचिका में की है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से मैगी में लीड का कंटेंट खतरनाक लिमिट्स के ऊपर होने की बात सामने आई है, जिसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और कई सारे राज्यों ने मैगी पर प्रतिबंध लगा दिए, और जिसके इस प्रतिबंध के बाद इन राज्यों की रिटेल और होलसेल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में से मैगी नूडल्स की बिक्री बंद कर दी गई है। अब इसके बाद नेस्ले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इन सब रिपोर्ट्स की न्यायिक जांच की मांग की है।
जी, हाल ही में नेस्ले के ग्लोबल CEO ने कहा था कि मैगी जो है सुरक्षित है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ सैंपल जांच के लिए दिए गए थे जिसमें तय मानक से ज़्यादा जो है सीसा या लेड नहीं पाया गया था, उसके बाद दोबारा जांच हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया था?
जब दिल्ली में और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब ये बात सामने आई थी, उत्तर प्रदेश FDA ने जब मैगी के सैंपल्स की जाँच करके ये बात कही थी कि इसमें सीसे का प्रमाण जो है वो खतरनाक लेवल्स तक है, उसके बाद देश भर में इसकी जांच शुरू हुई। महाराष्ट्र में भी कई जगह से सैंपल कलेक्ट करके मैगी की जांच की गई। पहली जो बैच थी उसमें तो लीड या सीसे की मात्रा इतनी नहीं पाई गई जिसे खतरनाक कहा जा सके, लेकिन दूसरी बैच जो कलेक्ट की गई थी पूरे राज्य भर से, उसमें जो जांच के बाद ये पता चला है कि उस बैच में लीड की कंटेंट बहुत ज्यादा थी जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मैगी पर एक कंप्लीट बैन लगा दिया है। जब तक उसका आगे का कुछ निर्णय होता नहीं तब तक महाराष्ट्र में मैगी नहीं बिकेगी।
तो मैगी नूडल्स पर लगे प्रतिबंध के विरोध में नेस्ले ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, कहा कोर्ट करे समीक्षा। ये थे मुंबई से अश्विन अघोर। और अब रुक करते हैं नेपाल का। नेपाल में बीती रात आई बाढ़ और भूस्खलन में 21 लोग मारे गए हैं और 27 लोग लापता हैं। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा बताई जा रही है। पहाड़ी इलाकों में आई इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वी जिला तापेलजंग बताया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने राहत कार्यों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। मैंने पूरी जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले काठमांडू फोन कर परिंदर देहाल से ज्यादा जानकारी मांगी।
पूर्वी नेपाल के तापलेजुंग और खादारी जिले के कई गांव भूस्खलन और बाढ़ के चपेट में पड़े हुए हैं। पुलिस ने वो कह रहे हैं कि कई आदमी उस इलाके में गायब है। वहां के 6 गांव में बड़ा नुकसान हुआ है और वो कह रहे हैं कि कई जो घर है वो बाढ़ ने बगाया है और हेल्थ पोस्ट भी बगाया है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डैमेज किया है। जैसे कि वो टेम्पोररी ब्रिज है उस इलाके के, वहां पर भी क्षति हुआ है और उस इलाके में हेलीकॉप्टर को मोबिलाइज किया गया था, मगर गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि बैड वेदर, वहाँ पर बारिश हो रही है और उसके कारण सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना प्रभावकारी हो नहीं सका है। वैसे ही विवरण खादबारी डिस्ट्रिक्ट से भी आया है, जहां पर एक क्रशर उद्योग को फ्लड बाढ़ ने बगाया है और वहां पर भी विभिन्न गांवों में ये भूस्खलन का समाचार आया है।
कई लोग लापता है और बारिश की वजह से जो है बाढ़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। यहाँ ये जानना चाहेंगे कि भूकंप के बाद अब बाढ़ की स्थिति से सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है नेपाल को, तो अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है?
सरकार ने ये इलाका जिसमें बाढ़ और भूस्खलन अभी दिखा है उसमें वो भूकंप का खास प्रभाव नहीं पड़ा था। सरकार कंसंट्रेशन भूकंप के सबसे बड़ी प्रभावित इलाकों में था और वहाँ पे कईयों गांव है जो भूस्खलन के उच्च जोखिम में है, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ के जो सेटलमेंट है उसको सारने की कोशिश कर रही है किसी सुरक्षित जगह पर, मगर इस इलाके में उसमें निर्णय में देरी हो रही है, इसलिए ये विपत्ति जो अभी आया है ये इसके लेकर गवर्नमेंट को न्यू चैलेंज है। वो अभी तक उस इलाके, ये इलाके काफी रिमोट एरिया है, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ तक कईयों गांव में अभी तक सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस भी पहुंच नहीं पा रहे हैं और वेदर भी बहुत मुसीबत खड़ा कर रही है, मगर सरकारी भनाई है कि वो पैदल से सिक्योरिटी फोर्स को और हेलीकॉप्टर से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्षति का विवरण भी अभी तक स्पष्ट नहीं आया है। पूरे गांव में तबाही है मगर कईयों आदमी लापता है, मगर वो विवरण अभी तक क्लियर नहीं आया है।
तो नेपाल में आई बाढ़ पर ताज़ा जानकारी दे रहे थे परिंदर दहाल। उधर असम में शनिवार से शुरू हुई मॉनसून की बारिश के बाद आई बाढ़ से अब तक 2,00,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके तिनसुकिया और लखीमपुर बताए जा रहे हैं। उधर ब्रह्मपुत्र और उसकी दो सहयोगी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैंने ताज़ा जानकारी के लिए गुवाहाटी फ़ोन कर स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा से ताज़ा जानकारी मांगी।
अभी तक तिनसुकिया और लखीमपुर जिले में सबसे ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। तिनसुकिया और सोनितपुर जिले में 4 राहत शिविर सरकार की तरफ से खोले गए हैं जिसमें 273 लोगों को रखा गया है। सरकार ने स्थिति को देखते हुए बुधवार को एक बैठक बुलाई थी। बैठक में उच्च अधिकारियों के साथ बाढ़ की समीक्षा की गई तथा एहतियात के तौर पर उन खाद्य सामग्रियों और दवाइयों का भंडार इकट्ठा किया गया है जिसकी जानकारी सरकार ने आज दी है ताकि आगे किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। बाढ़ की ताजा स्थिति पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव पीके तिवारी से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में पानी घुसा है वहां के जिला अधिकारी वहां राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। बाढ़ ये पहले चरण की बाढ़ है। असम में ऐसे चार चरण में बाढ़ आती है हर साल, ये पहले चरण की बाढ़ है। इसमें सरकारी अधिकारियों से बातचीत में पता चला है कि बृहस्पतिवार अपराह्न 1 बजे तक बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 2,00,000 पार कर चुकी है जबकि बुधवार शाम तक 1,95,243 लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए थे। अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,95,243 लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है, कई जिलों में लोगों को बचाव कार्य में जुटे अधिकारी सुरक्षित स्थानों पर ले आए हैं।
जी, यहाँ ये जानना चाहेंगे दिलीप की कितने लोग विस्थापित हुए हैं इस बाढ़ की वजह से? अब
शनिवार से राज्य में बाढ़ का सिलसिला जारी हुआ। मानसून के आते ही असम और अरुणाचल में भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहयोगी नदियों का पानी का खतरे के निशान से ऊपर आ गया जिसके चलते कई गांवों में कम से अब तक 13 जिलों के कुल 553 गांवों में बाढ़ का पानी घुसा है। जहां सरकारी आंकड़ों में बताया जा रहा है कि 8,245 हेक्टर कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है। 273 लोगों को सोनितपुर और तिनसुकिया जिले में स्थापित राहत शिविरों में रखा गया है। सरकार ने वहाँ खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की है।
ये थे गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा। और अभी अभी खबर आ रही है बिहार से कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ बिहार चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है मनीष शांडिल्य। मनीष, क्या ताजा जानकारी है?
बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, आज दोपहर में उनकी मुलाकात हुई जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह से। इसके बाद उन्होंने कुछ देर पहले दिल्ली में घोषणा की कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे में शामिल होके, एनडीए में शामिल होके, जो नीतीश कुमार और लालू की पार्टियों का गठबंधन है उसको पटकनी देने के लिए, उसको हराने के लिए जो एनडीए है अभी, जिसमें की भाजपा, रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और एक पार्टी रालोसपा शामिल है, उसमें वो शामिल होंगे और लालू नीतीश को पटकनी देने में एनडीए की मदद करेंगे।
जी, और वहाँ पर जो सहयोग से लड़ रहे हैं आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव, उसको लेकर क्या सुगबुगाहट है लोगों के मन में?
जी, सुगबुगाहट की बात करें तो आज जो जो घोषणा की है जीतनराम मांझी, वो उसी गठबंधन की घोषणा के बाद का नतीजा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कुछ दिनों पहले जो घोषणा हुई थी आरजेडी और जदयू गठबंधन की, और फिर उसके एक दिन के बाद सोमवार को नीतीश को नेता भी घोषित किया गया, उसके बाद चाहे जो भी हो, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर इंडिया के जो अपने घटक दल हैं, उन पे दबाव है कि वो गठबंधन का जो अपना स्वरूप है उसको एक आकार दें, और जो मांझी का आज की मांझी का जो आज का घोषणा है, ये उसी सुगबुगाहट उसी फैसले का नतीजा है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये थे पटना से मनीष शांडिल्य, और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
तो हर बृहस्पतिवार की तरह आज भी हम आपकी राय के साथ हाजिर हैं, और मेरे साथ मुस्कुराती हुई इंदु पांडे मौजूद हैं। इंदु, बहुत सारी चिट्ठियां दिख रही हैं, मुझे मालूम है पढ़ेंगी तो आप कुछ ही बस।
नहीं, पूरी पढ़ने की कोशिश होगी हमारी, क्योंकि ये चिट्ठियां हैं तभी आपकी राय है। और इस बार ये चिट्ठी हमें लिखी है पता दिस्तापुर रेहारिया मोहम्मद लखीमपुर खीरी से। कहते हैं कि दुनिया जहान में निखिल रंजन द्वारा जो उन्होंने रूस और यूक्रेन के विवाद पर अमेरिका यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप की जो रिपोर्ट दी थी बहुत अच्छी लगी, और शनिवार को सुशीला जी द्वारा दिया गया बीबीसी इंडिया बोल बहुत अच्छा लगा। बस इनकी एक छोटी सी शिकायत है कि कहते हैं कि भाई बहुत कम श्रोताओं की राय ली गई।
भाई ये तो बात है कि देखिए दो चीज़ें हैं, पहले मैं दुनिया जहां की बात करता हूं। दुनिया जहां हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घट रही घटनाएं हैं उसकी पूरी विस्तार से जानकारी लाते हैं, और ये हमारा एक साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसको कि आप पसंद कर रहे हैं और हमारे तमाम श्रोता उसे पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, बीबीसी इंडिया बोल आपको सुशीला सिंह का अच्छा लगा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कार्यक्रम को पसंद किया। और तीसरी बात कि आपने कहा कि चिट्ठियाँ बहुत कम ली गई, तो भाई होता क्या है, चिट्ठियाँ नहीं बल्कि आप श्रोताओं की बात कर रहे हैं। श्रोता कई बार क्या होता है कि विषय हमारा लंबा होता है और जो लोग उसमें शामिल होते हैं अपनी बात को लंबे तरीके से कहते हैं तो वक्त घट जाता है। सीधी सी बात यह है कि अगर वक्त घट जाएगा तो भाई संख्या कम हो जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान बिल्कुल रखा जाएगा
जरूर।
और दूसरी चिट्ठी,
दूसरी चिट्ठी है सैयद रफीक लखेपुरी की, बड़ी दूर से आई है। ये आई है चिट्ठी दुबई से। कहते हैं कि 10 जून की विश्व भारती में नितिन श्रीवास्तव जी चूक गए और तारीख 9 जून बताया, और कभी कभी तो प्रसारित कार्यक्रम अपडेट भी नहीं होते वेबसाइट पर प्रसारण के बाद, जिससे काफी निराशा होती है।
क्या नाम लिखा है इन्होंने?
इनका नाम है सैयद रफीक लखेपुरी।
रफीक साहब, भाई माफ़ी मांगते हैं कि नितिन श्रीवास्तव का ये जो कार्यक्रम आपने सुना और आपने नोटिस किया कि डेट गलत बोली गई है, कभी कभी हो जाता है ऐसा।
नहीं, ऐसा तो ये खुद भी कह रहे हैं कि मानता हूँ कि इंसान से चूक हो जाती है, लेकिन ये शोभा नहीं देता।
बिल्कुल शोभा नहीं देता, और वाकई अगर ये बात है तो हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं, कोशिश करेंगे कि आइंदा से इस बारे में इस तरह की कोई गलती ना दोहराई जाए, और तारीख बोलते समय हम और बेहद चुस्त होके तारीख बोलें। और दूसरी बात आपने कही है कि हमारे जो कार्यक्रम है वो सही टाइम पर अपलोड नहीं हो पाते, कोशिश हमारी होती है कि जैसे ही हमारे प्रसारण खत्म हो वो कार्यक्रम अपलोड कर दिए जाएं, और वो कार्यक्रम ऑटोमेटिक तरीके से अपलोड हो जाते हैं। कभी कभी कुछ तकनीकी व्यवधान होते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है, लेकिन अधिकांश तौर पर ये तुरंत अपलोड हो जाते हैं, और ख़ासकर आप तो जानते हैं कि आप हमारे इन सभी कार्यक्रमों को सीधे लाइव भी सुन सकते हैं। तो bbchindi.com के पन्ने पर लाइव आइए और लाइव प्रोग्राम सुनिए, और उसके बाद प्रोग्राम समय सीमा बीतने के बाद आप रिकॉर्डेड सुनिए।
और ये हैं आशीष रंजन नालंदा बिहार से। कहते हैं कि मेरा ये निवेदन है कि जब भी किसी की बातचीत के लिए किसी को आप बुलाते हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए।
नहीं भाई, हम तो चाय भी पिलाते हैं उन्हें और बोलने का मौका भी देते हैं। ये किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं?
ये किसी खास प्रोग्राम की बात नहीं करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जब किसी मेहमान को बुलाया जाता है तो शायद उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता।
ऐसा कहता ही नहीं है जनाब। हमारी कोशिश होती है कि भाई अगर हमने किसी अतिथि को आमंत्रित किया है तो उनके विचारों के लिए आमंत्रित किया है, और अगर वो यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आते हैं हम उन्हें पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी बात रखें और कहें।
और भाई हमसे इस बार शिकायत है, हमसे मानी कि मेरे से।
अरे वाह,
ये कहते हैं कि सोमवार को
किसी ने तो शिकायत की।
ये कहते हैं कि भाई राजेश प्रियदर्शी जी के साथ जो हमने चिट्ठी पत्री पढ़ी थी उसमें इनको बहुत बुरा लगा। ये
क्या बुरा लगा?
इनको बुरा लगा कि चलिए आपने, मेरा नाम प्रदीप सिंह था और आपने निखिल बना दिया, इसकी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
नहीं, लेकिन मैं अगर होता तो मुझे दिक्कत थी कि अगर भाई मेरा नाम ही आपने सही नहीं लिया तो भाई मुझे तो परेशानी है इस बात से।
लेकिन देखिए नाम था ना, बेनाम नहीं था। और इनकी जो शिकायत है वो ये है कि राजेश जोशी की तुलना पप्पू यादव से दबंग कह के की, और जो इनको बहुत हर्ट हो गए शायद। प्रदीप जी
भाई, राजेश प्रदर्शी ने बात कह दी, और कह दी तो बस आप भी इसे सुन नहीं ले, बाकी इसके पीछे का कोई आशय नहीं था।
बिल्कुल। और ये हैं हमारे साथ शोएब पटना से, लिखते हैं कि मैं आज पहली बार आपको लेटर लिख रहा हूं और स्कूल,
और हम पहली बार शामिल कर रहे हैं,
ये अच्छी बात है, और स्कूल के ज़माने से बीबीसी सुन रहा हूं और आज मैं डॉक्टर बन गया हूं। मैंने सोचा था कि जब डॉक्टर बनूंगा तो बीबीसी को लेटर लिखूंगा।
वाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद आपने हमें मेल भी किया। अब हम यही कहेंगे कि भाई लगातार सुनते रहें,
और बधाई हो डॉक्टर बनने की।
बिल्कुल।
निखिल रंजन की जो रिपोर्ट, जो पहले मैंने आपको पहला खत था, और चाइना की रेलवे लाइन की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी इनको, और रेहान फसल जी जाहिर है हर बार की तरह उनकी भी बहुत तारीफ करते हैं ये, और बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते रहिए और हमें चिट्ठी लिखते रहिए।
इन्होंने ये चिट्ठी भेजी थी कटिहार बिहार से।
तो अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, पता एक बार बताने की जरूरत है।
बिल्कुल, पता बता दीजिए, क्योंकि नए श्रोता सुनेंगे तो कहाँ चिट्ठी भेजेंगे।
तो पता नोट कर लें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और फिलहाल मोहनलाल शर्मा और
इंदु पांडे को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।
तो आज आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे मोहनलाल शर्मा और इंदु पांडे, और अब सुन लेते हैं खेल समाचार। आदेश जी मेरे सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। आदेश जी ये बताइए कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा हो तो लगता है पानी में धुल गया।
जी देखिए, अभी तो पूरी तरह से नहीं धुला, लेकिन आज दूसरे दिन का खेल जरूर धुल गया, और कल भी काफ़ी समय बर्बाद रहा था, और भारत का स्कोरबोर्ड पर वहीं टंगा हुआ है। दूसरे दिन भी बिना किसी नुकसान के 239 रन, शिखर धवन नाबाद 150 रन बनाकर, और मुरली विजय नाबाद है 89 रन बनाकर। अब देखिए कल इंद्र देवता की कृपा हो तो शायद तीसरे दिन खेल देखने को मिले।
जी, और यहाँ ये जानना चाहेंगे कि पी कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी जाने माने भारत के, वो टॉप 10 में पहुँच गए।
जी हाँ, काफ़ी लंबे समय बाद उनके चेहरे पर खुशी आई होगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसके अलावा पिछले दिनों इंडोनेशिया ओपन में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी चीन के चेन लॉन्ग को हराया था। हालाँकि सेमीफाइनल में वो मोमोतो से हार गए, जो कि जापानी खिलाड़ी हैं, और देखिए ये जो मोमोतो हैं, फिर इन्होंने फाइनल भी जीता, तो हार से निराश नहीं हुए हैं पी कश्यप। और थोड़ी देर पहले हमने पी कश्यप से बातचीत भी की, तो उन्होंने अपनी रैंकिंग और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कहा।
खुश हूँ कि वापस टॉप 10 में आया, मगर और भी अच्छा करना है, मुझे टूर्नामेंट जीतना है वैसे, तो बस ये इंकरेजमेंट से मानूंगा और आगे जाके टूर्नामेंट जीतना है मुझे। एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद ईयर के स्टार्ट में भी मैंने इंडिया में और लखनऊ में टूर्नामेंट जीता था मैंने, और मेरा रैंकिंग हमेशा 15 के नीचे कभी आया नहीं था, अच्छा रैंकिंग ही मेंटेन कर रहा था मैं, काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस आए थे, सिंगापुर में भी सेमीफाइनल खेला था मैंने, बस बीच में एक महीना इंजरी हो गया था, तो उसके वजह एक दो या तीन टूर्नामेंट में फॉर्म वापस आने के लिए थोड़ा टाइम लगा, मगर पूरा साल मैं अच्छा ही खेल रहा था एक्चुअली।
अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भी अच्छा खेलेंगे। उधर बेंगलोर में मेजबान भारत और ओमान के बीच 2018 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर का मुकाबला जारी है। थोड़ी देर पहले मध्यांतर हुआ, और अच्छा समाचार ये नहीं है, क्योंकि भारत 2-1 से पिछड़ रहा है। खेल के पहले ही मिनट में ओमान के कासिम सैद ने गोल किया, और हालांकि 26वें मिनट में सुनील छेत्री ने 1-1 से स्कोर को बराबर किया, लेकिन 48वें मिनट में ओमान के इमादल हौसनी ने पेनल्टी किक को गोल में बदलकर भारत को निराशा में डाल दिया। अब देखना मध्यांतर के बाद जब भारत एक बार फिर से मैदान में उतरेगा तो वो ओमान को किस तरह का जवाब दे पाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए, ये थे आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने म्यांमार में हाल ही में हुई सैन्य कार्रवाई पर कहा है कि यह अभियान भारत की बदलती सोच का दर्पण है। चीन के पूर्व वरिष्ठ नेता जू योंगकैंग को भ्रष्टाचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गिनिया और सीरिया लियोन में तीसरे हफ्ते लगातार इबोला के नए मामले बढ़े हैं। ब्रितानी अभिनेता सर क्रिस्टोफर ली का 93 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया है। फीफा के सूचना निदेशक वॉल्टर दे ग्रिगेरियो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी नमस्कार। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी शालू यादव। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 9:30 होगी फिर मुलाकात। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे bbchindi.com के जरिए। तो दीजिए इजाजत,